पापुआ न्यू गिनी के सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैनस आइलैंड डिटेंशन केंद्र को असंवैधानिक घोषित करने के बाद वहां रह रहे 850 डिटेनीज का भविष्य अभी स्पष्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मंत्री पीटर डटन का कहना है कि पापुआ न्यू गिनी सरकार के साथ बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि डिटेनीज को ऑस्ट्रेलिया लाना विकल्प नहीं है।
We will work with the PNG government and I've been very clear and I repeat it again today that the men off Manus Island will not be settling permanently in Australia and we'll work with the PNG government to help them return home or back to third countries. We are not going to allow people that have sought to come to our country illegally by boat to settle here permanently. We'll work with the PNG government to look through what options they have.
श्री डटन ने कहा कि उन्हें नाउरू भेजे जाने की भी जगह है, लेकिन इसका निर्णय पापुआ न्यू गिनी के साथ बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। ये भी सुझाव दिए गए हैं कि डिटेनीज को क्रिसमस आइलैंड डिटेंशन केंद्र ले जाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने इस संभावना को खारिज किया।
None of the people currently residing at Manus, none of the detainees there will come to Australia. Right? They will not come to Australia. That is absolutely clear and the PNG government knows that, understands that very well.
ये तय है कि ये केंद्र बंद होगा, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी दोनों में से एक भी इन डिटेनीज की जिम्मेदारी लेने पर सहमत नहीं हुआ है। लेकिन इमिग्रेशन मंत्री पीटर डटन ने कहा कि दोनों देशों के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया का दायित्व पापुआ न्यू गिनी पर है।
Well, the MOU is fairly clear and that's understood by both sides and the PNG government has to deal with the Supreme Court finding. They had already started to address what they thought may have been some of the concerns of the Supreme Court. The Supreme Court is binding obviously on the PNG government but not the Australian government in the same way.
So basically what you're saying is this is PNG's problem.
Well, I'm saying that we're prepared to work with our friends in PNG.
ऑस्ट्रेलिया अधिकारी इस विषय पर आपातकाल बैठक के लिए पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीटर ओनील ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन्हें शरणार्थी का दर्जा दे दिया गया है वो पापुआ न्यू गिनी में पुनर्वास कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच ऑस्ट्रेलिया के निदेशक एलीन पियर्सन ने कहा कि ये पापुआ न्यू गिनी की समस्या नहीं होनी चाहिए।
So it's really up to Australia to resettle those who've been found to be refugees, whether that's in Australia or whether that's in other countries. You know, the government can't just keep insisting for political reasons that these people will never be able to come to Australia, because the reality is they have to go somewhere. These are people who can't go back to their home countries. The terrible thing about this policy is that, you know, up till now we have seen some Syrians, some Iraqis go back, you know, and risk being detained or at risk of groups like ISIS rather than live a life in limbo in a detention center.
The Refugee and Immigration Legal Center के David Manning ने ABC को बताया कि अब एक स्पष्ट कानूनी और वास्तविक परिणाम है जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार ये सुनिश्चित करे कि मैनस आइलैंड पर शरणार्थी प्रार्थी और शरणार्थियों को जितने जल्दी हो सके आजाद किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला अति महत्वपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैसला एक मौलिक प्रश्न नहीं सुलझाता कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा तलाश रहे थे उनका आगे चलकर क्या होगा।
Any solution that is come up with must resolve the fundamental issue and that is to ensure that people can be brought to a secure and safe place so that they can rebuild their lives. PNG is not such a place, sadly so. It is not a place that can provide safety for refugees. It's not a place where people can sustain a proper livelihood. And the question remains, where will the government find a place of security and safety for the future? The big question here is, does the government have a plan? And they haven't outlined a plan, and the onus is on them to do so, because the fundamental responsibility for the fate of these people lies with the Australian government.
ऑस्ट्रेलिया में पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त चार्ल्स लेपानी ने कहा कि इस विषय पर और बातचीत अगले हफ्ते के शुरुआत के लिए तय है, लेकिन उन्हें एबीसी को संकेत दिए कि केंद्र एकदम अभी शायद बंद नहीं होगा।
Well, this is the subject of discussions between our officials by early next week. It's not going to close immediately because you have approximately 700 asylum seekers still there and we need to manage this going forward.
श्री डटन ने कहा कि सरकार इस केंद्र के बंद होने के मद्देनजर देर पिछले साल से योजना की तैयारी कर रही है, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूर्वानुमान होने लगा था, लेकिन उन्होंने स्काई न्यूज को बताया कि अब ये पापुआ न्यू गिनी की सरकार पर निर्भर करता है।
Already the PNG government has put in place some measures which would placate the concerns of the judges in the Supreme Court case. They'll deal with those issues and Whether or not the centre can continue on in some form is an issue for the PNG government. But potentially there's some time for this to be dealt with, and we'll deal with it in a measured, reasonable way, as you would expect.
Human Rights Watch ki executive director Kenneth Roth ne Late Line ko bataya ki adalat ka ye faisla ki is detention ka koi auchitya nahi hai, antarrashtriya kanoon ke anukool hai. उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की इस नीति के अंत की शुरुआत है, जिसको वो एक ऐसी नीति वर्णित करते हैं कि शरणार्थी प्रार्थियों का जीवन इतना तकलीफदेह बना दो कि वो अंततः अपने घर वापस चले जाएं।
I was surprised, but I was very happy because, frankly, a fair assessment of the policy would have led to the court's ruling. In other words, there is nothing illegal about seeking asylum. This is recognized in international law. A very large percentage of asylum seekers arrive without visas. You're not supposed to detain them. Australia flouted those rules, stuck them not only in detention, but in detention in this faraway island where there was, you know, an inhospitable population around them and no prospect of a normal life.
संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रेलिया के कड़े इमिग्रेशन नीतियों और नौकाओं को रोकने और डिटेन करने की आलोचना की है. वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एजेंसियों ने भी इसकी आलोचना की है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने डिटेनीज को नाउरू भेजने का भी सुझाव दिया है, लेकिन नाउरू डिटेंशन केंद्र की भी डिटेनीज के साथ व्यवहार को लेकर आलोचना हुई है. इसी हफ्ते वहां एक 23 वर्षीय ईरानी ने अपने आप को डिटेंशन के विरोध में आग लगा ली थी. कुछ ही देर पहले यह खबर आई कि उनकी मृत्यु हो गई है. पुनर्वास के लिए न्यूजीलैंड की संभावना को लेकर भी अटकलें लगाई गई हैं. लेकिन 3AW रेडियो स्टेशन से बात करते हुए प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने इस विचार को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी.
We've had discussions with a number of countries. Obviously, there's been some progress with Cambodia. There's a range of them.
Is New Zealand on the list? Because when I was over there, they told me they were willing to take people.
We have had discussions with New Zealand, but we have to be very clear that settlement in a country like New Zealand, for example, would be seen but would be used by the people smugglers as a marketing opportunity.
Human Rights Watch Australia ki nideshak Elaine Pearson ne kaha ki New Zealand ek khoya avsar hai.
I think it's really disappointing that today the Prime Minister has rejected the offer of New Zealand to accept 150 refugees per year. I think that, you know, that offer is made in good faith. And I think the government should absolutely be thinking about other countries like New Zealand or countries in the region that are prepared to accept these people, rather than paying tens of millions of dollars to countries like Cambodia, which have proven to have a terrible track record in terms of protecting refugees.
कम से कम कुछ डिटेनीज के वकीलों ने कहा है कि वो मुआवजे के लिए आवेदन भरेंगे, जो कि लाखों ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का हो सकता है.